ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। लोकसभा में कल संसद के संयुक्त सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि यह पिछले वर्षों की तरह ही था। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए श्री गांधी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है और सरकार इसे दूर करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत में संसाधनों के बावजूद देश उत्पादन के क्षेत्र में दूसरों से पीछे रह गया है और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्री गांधी ने अंत में कहा कि संविधान सर्वोपरि है और हमेशा उसी के अनुसार देश का शासन चलेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने प्रस्ताव पेश करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं सहित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नरेश चंद्र उत्तम पटेल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का उल्लेख न होने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस की डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में खाद्य महंगाई और कृषि ऋण को माफ करने की कोई बात नहीं की गई। शिवसेना यूबीटी के अरविंद गणपत सावंत ने किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में असमानताओं के बारे में अपनी चिंता जताई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रेलवे सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार का बड़ा मिशन शुरू किया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पश्चिम बंगाल में भारी निवेश किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि ओडिशा में 59 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस परियोजना के लिए 2,379 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र में रेलवे की परियोजनाओं के लिए 23,778 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। गुजरात को 17,155 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि आवंटन 2014 से पहले गुजरात को रेलवे बजट में मिलने वाले आवंटन से 29 गुना अधिक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल अंतिम समय सीमा तक सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर और कालकाजी विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें की। उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने जंगपुरा में डोर टू डोर कैंपेन और कस्तूरबा नगर क्षेत्र में रोड शो कर मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। जम्मू कश्मीर में कल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले में एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने कुलगाम के बेहबाग इलाके में पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी और बेटी पर हमला किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि उपराज्यपाल ने हमले में शहीद हुए सैनिक वागे को श्रद्धांजलि दी। एक बयान में उपराज्यपाल ने कहा कि पूरा देश शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है और आश्वासन दिया कि इस कायरतापूर्ण हमले में शामिल आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी तथा रॉ जैसी एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे। कांगो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने मानवीय चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की। यह घोषणा पिछले सप्ताह पूर्वी शहर गोमा में विद्रोहियों और कांगो सेना के बीच हुई लड़ाई के बाद की गई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में पंजाब की सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 25 मीटर थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।